आगे हम चलते हैं दरमियानी जलसा, बहुत ही अहम मुकाम है जिसके बारे में भी हम सब बहुत कम जानते हैं, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं पढ़ते। कुछ लोग सजदा करते हैं, अभी सीधे भी नहीं होते तो फौरन सजदे में दूसरे में जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इधर कुछ पढ़ना है। तो आइए जरा जलसा, और जलसा क्या होता है, दो सजदों के बीच की दुआ, ठीक है, दो सजदों के बीच में बैठना, इसको जलसा कहते हैं। हज़रत अबू हुमैयत साइदी रदी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से अपना सर उठाते और अपना बायां पाँव मोड़ते, यानी बिछाते जिसका टर्न करना होता है, फिर इस पर बैठते और सीधे होते, यहाँ तक कि हर हड्डी अपने ठिकाने पर आ जाती। पहले सजदे से सर उठाकर नहायत आराम और इत्मीनान से बैठ जाते, और वो दुआएं हम आगे इंशाल्लाह भी पढ़ने वाले हैं, इनमें से यानी कोई भी दुआ पढ़ते, फिर दूसरा सजदा करते। तो ये रिवायत जो है, ये तिर्मिज़ी की रिवायत है 304, और इसी तरह से इमाम नवी ने अपनी बुक अल मजमू में जिल्द 3 407 पे भी कहा, और तिर्मिज़ी में भी है। अब ये देखिए कि ये दुआएं क्या हैं। पहली बात तो यहाँ से ये समझिए कि दो सजदों के बीच में दुआ होती है। बहुत हैरत हुई कुछ लोगों को जब पहली दफ़ा उनको पता चला, कहते हम तो कुछ नहीं पढ़ते, और इसीलिए शायद वो फिर जल्दी से सजदे में जाते थे। तो आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं एक दुआ है या ज्यादा है, और ख़ास तौर पे फिर हमारे बैठने की पोजीशन क्या होनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब आप दो रकतों में बैठते तो अपना दायां यानी राइट फुट, दायां पाँव खड़ा कर लेते थे, यानी स्टैंडिंग फॉर्म में होता था। बुखारी की रिवायत है 828 नंबर की, और इसमें क्या पता चला कि आप अपने दो रकतों के बीच में बैठते तो दायां पाँव खड़ा करते और अपने दोनों पाँव की उंगलियां किबला रुख करते थे। अब ये कैसे हो सकती हैं, जब पाँव को उल्टी साइड से मोड़ेंगे, यानी आप बैठेंगे इस तरह से कि पाँव की उंगलियां मुड़ी हुई होंगी। और ये रिवायत है निसाई में 1159 और इब्ने खुजैमा 689। फिर इसी तरह तीसरी चीज़ देखिएगा, आपकी सिचुएशन क्या होती थी, कभी कभी आप अपने दोनों पाँव खड़े करके एड़ियों पर भी बैठते थे, ये रिवायत भी ले लीजिए। मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, क्यों हैं इसको भी हम देखते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है 536। अब आप देखिए कि पहली में हमने पढ़ा कि आप दायां पाँव खड़ा करते थे, दूसरे में देखा कि उंगलियां किबला रुख करते हैं, फिर तीसरी चीज़ हमने देखी कि दोनों पाँव खड़े करके एड़ियों पर भी बैठते थे। ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में हुआ होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सुकून और इत्मीनान से जलसे में बैठते थे। इसके अलावा आपने जलसे में ना बैठने वाले की नमाज की नफी फरमाई, यानी उसकी नमाज ही ना हुई जो दो सजदों के बीच में नहीं बैठता। लेकिन अफसोस के कि आम लोगों को जलसे का इल्म ही नहीं, हमें दूसरे जलसों का पता है जो लोगों को इकट्ठा करके रातों को होते हैं, जलसे जुलूस के नाम पे कह लीजिए। बहरहाल जलसा कहते हैं वो बैठा, तो जलसा बैठने की कैफियत को कहते हैं। जलसा नमाज में फर्ज है, इस जुमले को बड़ा बड़ा करके लिख लें, फर्ज है ये। अगर एक सजदे के बाद आप बिल्कुल कमर सीधी करके नहीं बैठे तो नमाज का एक फर्ज छूट गया। इसमें तमानियत भी फर्ज है, तमानियत के पीसफुल, रिलैक्स्ड, पुरसकून होना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सजदे के बराबर होता था, यानी जितनी देर आप एक सजदा करते तो फिर उठकर जब बैठते तो उतनी ही देर फिर दोबारा बैठते भी थे उसमें। सुबहान अल्लाह, ये कैफियत देख लीजिए। ये रिवायत है बुखारी की 820 और मुस्लिम 471। फिर इसी तरह से आप देखिए कि कभी कभी आप ज्यादा देर तक बैठते, यहाँ तक के बास लोग कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरा सजदा करना भूल गए। अल्लाह अकबर। बुखारी की रिवायत है 821 और मुस्लिम 472 473। तो क्या पता चला कि कभी लंबा बैठते लेकिन कम अज कम इतना जरूर बैठते जितना एक सजदे के बीच में टाइम लगा था। अब बैठे तो करें क्या, सवाल है, बैठ जाएं कुछ बातें सोचें इधर उधर की, नहीं, दो सजदों के दरमियान बैठते तो मसनून दुआओं में से ये दुआएं पढ़ते। अभी हम इसको भी पढ़ के फिर इंशाल्लाह इकट्ठे पढ़ेंगे। इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ये पढ़ते, अल्लाहुम्मा ग़फिरली व रहमनी व आफिनी वहदिनी वरज़ुक़नी। ए अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, मुझे आफियत से रख, मुझे हिदायत दे और मुझे रोजी अता कर। चाहिए हमको ये सब चीज़ें, हमारी ज़रूरत है ये? आज लोगों को रोटी कपड़े का जगह का मसला बना हुआ है, घर डूब रहे हैं सैलाब में, राशन चाहिए लोगों को, दुआओं में लिखा हुआ है। दिल से मांगेंगे अल्लाह सबब पैदा करेगा। और ये रिवायत अबू दाऊद की 850 और तिर्मिजी में 284 है, और इसी तरह हाकिम में 262 भी है। और भी रिवायतें हैं, आप उसको भी चाहें तो नोट कीजिए। एक एक चीज़ रब से मांगिए। दुनिया में किसी इंसान की औकात ही नहीं है कि आपको पानी का एक घूंट पिला सके। वमा तौफीक इल्ला बिल्ला वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। जितना अकीदा पुख्ता करते जाएंगे, मालिक आपकी शारक से भी करीब है, आपकी बातें ऐसे करीब होके सुनेगा कि आप खौफ सदा हो जाएंगे कि मैंने तो भी किसी से जिक्र भी नहीं किया तो मेरे दिल की बात किसने पढ़ ली। ये मालिक है जो हमारे दिलों की ख्वाहिशात और दुआओं को भी कबूल करता है और बातों को सुनता है। फिर अगली दुआ हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सजदों के दरमियान ये पढ़ा करते थे, रब्बिग़फ़िरली रब्बिग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ फरमा। है ज़रूरत माफ़ी की हमें? किया है कुछ हमने गुनाह? है कोई हमारी कमी बेशी? बहुत सारी हैं। तो रिवायत अबू दाऊद की 874 है, और ऊपर वाली रिवायत अबू दाऊद की 850 थी। और जब आप इनकी तफसीलात में जाते हैं तो आपको क्या कुछ दिखता है। तो अल्लाह से मांगिए, बख्शिश मांगिए, गुनाहों की माफ़ी मांगिए, अल्लाह देने पे कादिर है। फिर इसके बाद दूसरा सजदा किया जाएगा, और जब पूरे इत्मीनान से जलसे से फारिग हों तो फिर दूसरा सजदा करें। और पहले सजदे की तरह इसमें भी बड़े खुशू और खुदू और कामिल इत्मीनान से दुआ या दुआएं पढ़ें और फिर उठें। आप देखिए कि जब आप एक एक लफ्ज़ पे गौर करेंगे ना तो नदामत से सर झुक जाएगा। मैं तो अक्सर सोचती हूँ कि हमारी तो नमाजें भी ऐसी हैं कि जिसके बाद फिर माफ़ियाँ मांगने की ज़रूरत है कि अल्लाह ये टूटी फूटी तूने ही कबूल कर ली होगी तो कर ली, तेरे बंदे तो हमसे ऐसी चीज़ें कभी ना कबूल करें। किस तरीके से इंसान अल्लाह के हक़ में हक तलफियाँ करता है ये हम सब जानते हैं। तो आप देखिए कि इतनी खूबसूरत दुआएं जिसमें बख्शिश भी है, रिस्क भी है, रोटी भी है और गुनाहों की माफ़ी भी है। जब हम एक शऊर की नमाज पढ़ के उठेंगे हमारा दिल हमें बताएगा कि हमने जो मांगा था वो हमें मिल गया। फिर आप देखिए कि दूसरे सजदे में भी उन्हीं दुआओं में से जो हमने सजदे की दुआएं की थी उसमें से कोई भी दुआ मांग लीजिए। इसके बाद मौकाता जलसा इस्तराहत का, ये कब है? एक रकत पूरी होने के बाद। जलसा इस्तराहत का मतलब कि एक सेशन पूरा, दूसरा सजदा कर लेने के बाद एक रकत पूरी हो चुकी है, अब दूसरी रकत के लिए आपको उठना है। लेकिन उठने से पहले जलसे इस्तराहत में बैठकर उठिए। इसकी सूरत यह है, देखिएगा आप, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता था और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इन सेशंस के दौरान क्लैरिटी भी की और आप मज़ीद ले लीजिए। क्या है जलसे इस्तराहत? पहली बात है इसमें कुछ नहीं पढ़ना, इट्स योर रेस्टिंग फेस। इस्तराहा कहते हैं ड्राइंग रूम को, रेस्टिंग प्लेस को बेसिकली कहते हैं। लफ्ज़ राहत है अंदर, राहत आ राह रोहन से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते हुए दूसरे सजदे से उठते और अपना बायां पांव मोड़ते हुए बिछाते और इस पर बैठते, हत्ता कि हर हड्डी अपनी अपनी जगह पर पहुंच जाती, फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होते। जी, ये रिवायत अबू दाऊद में 730 और तिर्मिजी में 3047 और इब्ने माजा में 1061 और इसी तरह और से। अब आप देखिए इसका क्या मतलब है, ये क्यों है? ताकि रिलैक्स्ड हो। पहली तो बात है हमारी तो पूरी नमाज 8-10 मिनट की है। अल्लाह के नबी की एक एक रकत इतनी लंबी होती थी कि आपको जलसे इस्तराहत में बैठने की ज़रूरत होती थी, और जितनी देर मर्जी बैठे। ऑफकोर्स गफलत तो नहीं आएगी, आप नमाज की हालत में ही होंगे, ज़ाहिर है नमाज का सतर है, नमाज का लिबास है, लेकिन आप जितना भी देर चाहें बैठ सकते हैं। वहाँ बैठने से आपको सुकून क्या मिलेगा? कि आप सुकून के साथ अपने आप को वहीं खड़ा करेंगे जहां पे थे। फिर इसके बाद आप देखिए कि आपकी एक रकत जहां पूरी हुई, जो इतने शौर से इतनी दुआओं से भरी हुई रकतें पढ़ लेगा, बताइए कि अल्लाह को उस पर रहम नहीं आएगा। आप अपने बच्चे को जहन में लाइए, अपनी मासी को लाइए, मेट गुलाम तो आज है नहीं, कोई बंदा इतनी लजाजत से इतनी मिन्नत समाजत से आपको मनाने की कोशिश करे तो क्या आप नहीं मानेंगे? इसलिए आप देखिए कि नस्सलात तनहा अनिल फख्शाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और मुनकर से क्यों बचाती है? क्योंकि नमाज में माफियां होती हैं, रब से तलब होती है, रब से चीजें मांगता है इंसान। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज की ताक यानी पहली और तीसरी रकत के बाद खड़े होने से पहले सीधे होकर बैठते थे, जो कि अभी हमने देखा, और ये रिवायत बुखारी की 823 है। फिर दूसरी बात, जलसे इस्तराहत से उठते वक्त दोनों हाथ जमीन पर टेक कर उठे, इसके बगैर उठना मुश्किल होगा, बंदा उठ ही नहीं सकता, पूरे जिस्म का बोझ पड़ता है दो हाथों में, और ये बुखारी की रिवायत है 824। और मैं जब भी कभी ऐसे भी उठूँ, शऊर से ही उठती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं उस वक्त सोचती हूँ। और अब आज के बाद अगर आपने कभी नहीं सोचा तो आज की अगली नमाज में सोचिएगा, हमारे पूरे जिस्म का बोझ हमारे ये दो गुट, जिसको आप ये गुट कहते हैं ना, रिस्ट, इसके ऊपर होता है। यूं करके उठते हैं, थोड़ी देर के लिए जब आप उठ रहे होते हैं तो पूरा जिस्म का बोझ इस पे होता है। ये इतनी मजबूत चीज है, कलाई इधर ही नब्ज है, पल्स भी इधर ही है, सुभान अल्लाह। उस वक्त मैं सोचती हूँ कि अगर जरा हाथ मुड़ जाए या हिल जाए, जोड़ी उतर जाए, कितनी ताकत है। जैसे हमारे पाँव, हमारी टांगे, हमारे जिस्म के वजूद का बोझ लिए बैठी है ना, तो ये भी मजबूत हिस्सा होता है जिस्म का। और अल्लाह ताला हमें इन चीज़ों पे गौर व फिक्र की तौफीक दे। मैं उठते हुए सोच रही होती हूँ कि अगर ये मेरा बोझ ना सहारे तो मैं गिर जाऊंगी, या ये खुद टूट जाएंगे, या क्या होगा, कैसे होगा। बहुत प्यार आता है उस वक्त अल्लाह ताला पर। फिर इसी तरह आप दूसरी रकत शुरू हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दूसरी रकत के लिए खड़े होते तो सूरत फातिहा की किरत शुरू कर देते और सकता नहीं करते थे। ये सकता क्या होता है, पहले तो ये रिवायत नोट कर लीजिए, यानी जब दूसरी रकत, अब कह लीजिए कि सेम एक्शन अब रिपीट होने लगा है, फ़र्क सिर्फ कितना है कि किरत शुरू करते और सकता ना करते, यानी खड़े होते ही किरत शुरू कर देते। ये मुस्लिम की रिवायत है 599, यानी बस अल्लाह अकबर कहकर खड़े हुए और सकता ना करने में। बाज़ लोगों ने इसको ऐसे भी लिया है कि दूसरी रकत में वो सूरह फातिहा ऐसे पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, यानी बीच में रुकते नहीं। पहली रकत में हमने बात की थी ना तफसील से कि हर रकत पे रुकना है फिर अगली पे जाना है, ठीक है। यानी सकते से कुछ लोगों ने ये भी मुराद लिया, जो मैंने आपको भी बोल के बताया। अब दूसरी रकत वैसे ही होगी जैसे पहली थी, दूसरा रकू वैसे ही हो गया जैसे पहला रकू था, दूसरा कौमा वैसे ही होगा जैसे पहला था, और इसी तरह से दूसरा सजदा और जलसा इस्तराहत भी वैसे ही होगा। इसके बाद कहाँ होंगे आप? दो रकतें पढ़ चुके, आप क्या करेंगे? फौरन उठ जाएंगे पहली रकत की तरह? नहीं। क्या करेंगे? पहला तशहुद, सबको पता ही है ना, कोई मुश्किल तो नहीं। यानी पहली रकत में तो हम जलसे इस्तराहत में जितनी देर भी बैठे लेकिन कुछ पढ़े बगैर खड़े हो गए, लेकिन आपकी अब दो रकतें हुई, अब क्या करेंगे? तशहुद। इसको कादा उला भी कहते हैं, कादा कहते हैं बैठने को, उला पहला, मुअन्नस असल में अव्वल से, यानी पहली दफा का बैठना। नोट करिए ये वाजिब है। अगर कोई शख्स नमाज में पहला तशहुद भूल जाए तो नमाज के आहर में सहव के दो सजदे कर ले। कभी ऐसा हो सकता है, लोग सवाल करते हैं, आप देखिए यहाँ आपको सवालों के जवाब मिलेंगे, शायद मैं ऐसे ही दूसरी रकत के बाद खड़ी हो गई थी, हाय पता नहीं बैठी हूँ कि नहीं, भूल गई, क्या करूँ। आखिर में दो सजदे कीजिए, सहव यानी गलती का कॉम्पनसेशन है। ये अबू दाऊद की रिवायत है 1033, ठीक है। पहली चीज ये समझ आ गई। दूसरी बात क्या है कि दूसरी रकत के बाद दूसरे सजदे से उठकर बायां पांव बिछाकर, अब ये बहुत अहम है, ये हमारे कल्चर में अक्सर लोगों को नहीं पता होती, अगर आप हदीस ना पढ़ें तो आप नहीं समझ सकेंगे। बायां पांव लिटाएं, यानी जैसे ले डाउन, इस पर बैठे और दायां पांव खड़ा रखें, दायां हाथ अपने दाएं घुटने और अपना बायां हाथ बाएं घुटने पर रखें। दलील अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, और ये जो दोनों ऊपर की बातें इनके दलाइल भी ले लीजिएगा साथ ही, कि इसमें पहली बात जो उसमें बुखारी की रिवायत है 827-828 और मुस्लिम की रिवायत है 579। और अब जो हम पढ़ने लगे हैं ये मुस्लिम की रिवायत है 579। क्या है इसमें? अल्लाह के नबी सल्लम क्या करते थे? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की ये रिवायत है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ादा यदू वदा यदहुल युम्ना अला फ़खिज़िहिल युम्ना व यदहुल युस्रा अला फ़खिज़िहिल युस्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में बैठकर दुआ, मुराद क्या है, तशहुद और दुरूद वगैरह पढ़ते तो अपना दायां हाथ अपनी दाईं रान यानी थाई और बायां हाथ बाईं रान पर रखते। क्या पता चला? नमाजी को रुख्सत है चाहे दोनों हाथ घुटनों पर रखे चाहे रानों पर। अब आप कादाए उला में तशहुद पढ़ेंगे। बैठने की कैफियत समझ आ गई? लेफ्ट पाँव लेटा हुआ और आप उसके ऊपर बैठेंगे और राइट पाँव सीधा। इस पोजीशन में बंदा ज़्यादा देर नहीं बैठ सकता चूँकि ये तशहुद मुख्तसर होता है, तो इसमें इस तरह बैठना है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे जो आखिरी तशहुद है उसमें हम पाँव पे नहीं बैठते बल्कि पाँव आगे निकाल कर ज़मीन पे बैठते हैं, यानी वो मोर एक लीन करना रिलैक्सिंग पोजीशन होती है। तो दोनों हाथ रखने में बहरहाल आपको दोनों रुख्सतें मिल गई, चाहे तो घुटनों को पकड़ लें या इवन थाइस पे हाथ रख लीजिए। अब यहाँ देखिए तशहुद में क्या कुछ करना है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज में कादे के लिए बैठो यानी यही तशहुद, तो ये पढ़ो, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबीयु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक एक लफ्ज पे गौर कर, पहले तो सोची इसका तर्जुमा कभी सोचा भी हमने, और जब मुझे फर्स्ट टाइम इस तर्जुमे की समझ आई थी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हम क्या पढ़ते थे। पहाड़े ही पढ़ते थे, टेबल्स थे जो दोहरा रहे थे, और लोग क्या पढ़ते हैं, अत्तहियातुलिल्लाह, कोई अत्तहियात को अत्तहियात, कोई लफ्ज नहीं अत्तहियात, अत्तहियात तहियत उनकी जमा। तहिया कहते हैं गिफ्ट को, वक्त मुलाकात का सलाम, जैसे लोग कहते हैं आज गुड मॉर्निंग, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। जब कोई किसी को मिलता है ना तो उस वक्त कोई गिफ्ट पेश करता है उसको तहिया कहते हैं। और बाज़ लोग इसको मेराज के मौके से मंसूब करते हैं कि अल्लाह के नबी ये तोहफा लेकर गए थे अल्लाह की तरफ, वल्लाहु आलम। लेकिन लफ्ज़ बड़े प्यारे हैं, सुनिएगा तर्जुमा। सिर्फ लफ्ज़ अत्तहियात जो है ना, इसके अंदर तर्जुमा क्या है, मेरी सारी कौली बदनी और माली इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए। किधर से ये कौली बदनी माली आ गया? तहिया। मेरे ज़ुबान से कौल निकलेंगे तो अल्लाह के लिए, मेरा बदन इबादत करेगा थकेगा चूर चूर होगा तो अल्लाह के लिए, और मेरा माल लगेगा तो अल्लाह के लिए। ज़रा सा अपने ऊपर लेकर सोचिए, हमारी ये तीन चीज़ें आज कहाँ लग रही हैं? क्या वाकई हमारी ज़ुबान अल्लाह ही के लिए बोलती है सारा दिन? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ। क्या मजान देने वाले हैं कि हम अल्लाह की तरफ पुकारे? हम दावा करने वाले, तबलीग वाले, हम अच्छी बातें करने वाले, किसी का दर्द सहने वाले, या सारा दिन पटर पटर बेकार बोलते हैं, सिर्फ बोलना बराए बोलना? चलिए, मेरा बदन किस में थकता है? अगर आप इस वक्त टायर्ड फील कर रही हैं, और कर रहे होंगे, जो लोग सुबह से उठे होंगे, कुछ कहेंगे हमें सुबह का एक मिनट बैठने का मौका नहीं मिला, कोई कहेगा जब से उठे बैठे नहीं, चले कोई 12 बजे से भी उठा होगा तो नहीं सोया सुबह, कुछ तो फजर के उठे हुए। किधर लगा ये बदन? ये थकन इस वक्त किस चीज़ की है? ये आवाज़ क्यों थक रही है? ये कमर क्यों टूट रही है? क्या हम वाकई तही याद जो कहते हैं फिर वो सच कहते हैं कि झूठ कहते हैं? ये बातें अगर हम कह देना, सिर्फ अपने आप को सुनाती हूँ कि मेरी सारी कौली बदनी और माल किधर खपता? एक की जगह 10 और 10 की जगह 100, और होता किस लिए और कमाना कैसे है? कर्ज भी लेने पड़े तो किसके लिए लेते हैं? क्या सिर्फ अल्लाह के लिए? 3 सेकंड मैं पहले गौर करूं, आपका भी दिल चाहे तो कर लें। सच बोलती हूं हर नमाज में? वाकई मेरा माल अल्लाह के रस्तों में खप रहा? अल्लाह हमें अपने कॉल और फेल के तजाद को मिटाने की तौफीक दे। फिर आप देखिए नबी, आप पर अल्लाह तला की रहमत सलामती और बरकतें हों। यहां आप नबी सल्लम के लिए मांग रहे हैं, नोट करिएगा, और हम पर और अल्लाह के दूसरे नेक बंदों पर भी सलामती हो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। तो ये है जिसको हम अत्तहियात कहते हैं, ये दूसरी रकत में पढ़ना होता है। फिर आपने ये भी फरमाया, इन कलेमात यानी अस्सलाम वालेना वाला इबादिल्लाहे सालेहीन के पढ़ने से हर नेक बंदे को, ख्वाब वो ज़मीन पर हो या आसमान में, नमाजी का सलाम पहुंच जाता है। रोंगटे खड़े करने वाली बात है अगर आपने गौर से सुना हो तो। बुखारी की रिवायत है 831 और मुस्लिम 402। सच बताएं, यहां तो बैठ के सुन रहे हैं, जब बोल रहे होते हैं तो वाकई ये बोल रहे होते हैं। आप कहते हैं कि नबी सल्लम पे दरूद और नबी, तो यहां तो आप नेक बंदों पर सलाम पहुंचा रहे हैं। कभी आज तक अस्सलाम वालेना वाला इबादिल्लाह सालेहीन पढ़ते हुए सोचा था? हर बंदा वो नेक है, शर्त है, जमीन पर हो या आसमान में नमाजियों के सलाम जाते हैं, और जब दिन में लाखों करोड़ों नमाजी अस्सलाम वालेकुम कहें तो सलामतियां पहुंचती हैं ईमान वाले को कि नहीं? तभी तो बंदा डिप्रेशन फ्री, तभी तो स्ट्रेस फ्री, बीमारी फ्री, परेशानी फ्री, ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। एक गम लगा लीजिए, सारी कायनात आपकी मुआविन बन जाएगी। हम लोगों से कहते हैं दुआएं करें, दुआ में याद रखिए, क्या मांगे? कि अल्लाह आपको हिदायत दे। ये मांगे कि अल्लाह आपसे नाराज़ ना हो। आप देखिए कि मोमिन को एफर्ट नहीं करनी पड़ती उन कामों के लिए जिसके लिए गैर मोमिन हर वक्त तड़पता रहता। हम सोचते हैं दूसरे हमारे लिए दुआएं करेंगे, हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह करे ऐसा हो, अल्लाह चाहे तो ये भी हो सकता है, लेकिन शर्त तो नहीं है। अब जरा से इस पे गौर कीजिए, इसमें दो तीन अकीदे की बारीकी है। पहली बात देखिए कि ये अल्फाज एक मुसलमान तशहुद में जो पढ़ता है, ये नबी सल्लम का हुक्म समझ कर पढ़ता है। सहाबे कराम के ज़माने से लेकर आज तक तमाम सही उल अकीदा मुसलमान इसे पढ़ते आ रहे हैं, और किसी को ये ख्याल भी नहीं गुजरा क्या कि आप हाजिर और नाजिर हैं। वरना ये अल्फाज जो यहाँ मजकूर हैं, यानी जिनका जिक्र है, कि अलैका अय्युहन नबी से शिरकिया अकीदे, यानी कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब या हाजिर और नाजिर थे, जानते थे सब गैब की बातें भी। और हाजिर नाजिर क्या है? जैसे इस वक्त मैं आज लंदन में हूँ, आप लोग भी इधर हैं, जो भी इस इलाके का नाम है, क्या आप इस वक्त मैनचेस्टर में भी हैं, ओस्लो में भी हैं, आप बर्मिंगम में भी हैं? फिर तो बातें खत्म हो गई। आप इधर अपने वजूद से फोन के जरिए आप सारी दुनिया से रब्ते में हो। तो याद रखिए, अगर अल्लाह के नबी के लिए आप कहते हैं ना, तो आपको सारे नेक लोगों के लिए मानना पड़ेगा। इतनी बड़ी ठोकर खाई लोगों ने अलैहि का यूहन नबी से कि देखे देखे अल्लाह के नबी को हम कह रहे हैं ए नबी, तो किधर है नबी? भाई अल्लाह के नबी ने सिखाया था, हमने उस वक्त सीखा और पढ़ लिया। तो ये सब बातें इल्म की कमी है, जानबूझ के कोई नहीं करता। बेइल्मी का इलाज इल्म ले लेना बस। पहले तशहुद में सिर्फ अत्तहियात पढ़ने पर भी इक्तफा किया जा सकता है, जो हमारे कल्चर में 98% लोग करते हैं, बस अत्तहियात पढ़ के उठ जाते हैं। हम खुद भी ऐसे ही करते थे, सच्ची बताऊं। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादे उला में तशहुद से फारिग होकर खड़े होते थे, ये मुसनद अहमद की रिवायत है 459 और इब्ने खुज़ैमा में 708 है। ठीक है, बस रिवायात से पहले तशहुद में अत्तहियात के साथ दुरूद पढ़ने का जिक्र भी मिलता है, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात की नमाज की कैफियत बयान करते हुए फरमाती हैं, यानी तहज्जुद की नमाज, क्या आप रात को 9 रकात इस तरह पढ़ते कि इनमें से किसी के आखिर में ना बैठते मगर 8वीं रकत पर बैठते, अल्लाह की हम करते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते और दुआएं करते मगर सलाम ना फेरते, फिर 9वीं रकत पढ़कर बैठते और अल्लाह की हमदो सना करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ते, दुआएं करते, फिर सलाम कहते। ये सब कुछ एक ही रिवायत में है, और रिवायत का नंबर निसाई की रिवायत है 1721। क़ियामुल लैली व ततव्वुन नहार, ये है उस बाब का नाम। क्या पता चला कि तशहुद में ये सारा कुछ पढ़ा जाएगा। अब आप देखिए कि इस हदीस में पहले तशहुद में भी दुरूद शरीफ पढ़ने का जिक्र मिलता है, अगरचे ये नमाज नफली हो लेकिन फ़र्ज नमाजों में भी पढ़ा जा सकता है। अक्सर उलमा के नज़दीक पहले तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ना पसंदीदा है, यानी मुस्तहब है, और इस हदीस की रोशनी में पहले तशहुद में दुरूद शरीफ के बाद दुआ भी की जा सकती है। अब आप देखिए कि ये सारा कुछ जो हम पढ़ें, इन दुआओं को भी ज़रा सा दोहराइए और प्लीज़ अत्तहियात के लफ्ज़ को आज सीख लीजिए। यहाँ से शुरू करके जितनी दुआएं आई हैं आप पढ़िए ज़रा मिल के। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखिए कि थोड़े से शऊर से पढ़ें, अगर शुरू से आदत पड़ी हुई है दूसरी तरह पढ़ने की तो इंशाल्लाह ताला शऊर के साथ पढ़ने के साथ साथ ये सब कुछ ठीक होगा। अब ये तो दुआएं थी। अब एक बहुत ही मारूफ मसला जिसको बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं वो क्या है, तशहुद के दौरान उंगली कहाँ रखी जाए। इसको कहते हैं मसलाए रफाए सबाबा। पहले क्या था, रफुल यदैन, रकू में हाथ दोनों ऊपर किए जा रहे हैं। सुबाबा कहते हैं इसको, तशहुद की उंगली को। रफा उठाना, यानी ये उंगली उठाई जाएगी कि नहीं। अमूमन हमारे कल्चर में लोग क्या करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर दोबारा व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, बस इसके साथ जोड़ा हुआ और गवाही के साथ उंगली को हम ऊपर करते हैं। लेकिन इसके बारे में क्या कुछ है सही रिवायत में, ज़रा पढ़ते हैं। तशहुद में उंगली उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बाबरकत और अजमत वाली सुन्नत है। इसका सबूत सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के कादा में बैठते तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और अपनी दाई उंगली जो अंगूठे के नज़दीक है उठा लेते, बस इसके साथ दुआ मांगते। ठीक है, यानी हाथ घुटनों पे रखते और दाएं उंगली यानी राइट साइड जो भी है अंगूठा, यानी ये जिसको हम शहादत की उंगली कहते हैं, इसको उठाते थे और फिर दुआ मांगते थे। ये रिवायत मुस्लिम की है 580। बस इसके साथ दुआ मांगते, इसका क्या मतलब है? इसका सही मफहूम यह है कि अंगुश्ते शहादत से इशारा फरमाते, जैसा कि बाद में आने वाली रिवायात में इसकी वजाहत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में तशहुद पढ़ने बैठते तो अपना दायां हाथ दाईं रान पर और बायां हाथ बाईं रान पर रखते, फिर शहादत की उंगली से इशारा करते और अपना अंगूठा दरमियानी उंगली पर रखते। दरमियानी उंगली ये शक्ल बनती है, अंगूठी पर रखते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद कर लेते और अंगूठे के साथ वाली उंगली से इशारा करते। ये कैफियत है, घुटनों के ऊपर उंगली रखी जाती है। और इनकी रिवायत आपके सामने है, मुस्लिम 579 और मुस्लिम में 116 और 580 में, यानी ये दोनों अलग अलग अहदीस से आपको मिल जाती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ की तमाम उंगलियां बंद करके अंगूठे वाली उंगली से इशारा करते। वाइल बिन हजर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से उठकर कादा में बैठे, दो उंगलियां बंद की, अंगूठे और दरमियान की बड़ी उंगली से हल्का बनाया और अंगुश्ते शहादत यानी कलमे की उंगली से इशारा किया। यानी उंगली से इशारे से मुराद ये कि उसको मूव कर देना। ये रिवायत भी लीजिएगा, अबू दाऊद की रिवायत 726 है। वाइल बिन हजर रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सजदे से उठकर कादा में बैठे, दो उंगलियां बंद की, अंगूठे और दरमियान की बड़ी उंगली से हल्का बनाया और अंगुश्ते शहादत यानी कलमे की उंगली से इशारा किया। वाइल बिन हजर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली उठाई फिर इसे हिलाते थे। शेख अल्बानी फरमाते हैं रहमहुल्ला, उंगली को हरकत ना देने वाली रिवायत शाज या मुनकर है यानी स्ट्रांग नहीं है, लिहाजा इसे हदीस से वाइल के मुकाबले में लाना जायज़ नहीं, जबकि बास दीगर उलमा ने हरकत वाली रिवायत को शाज करार दिया। आप देख सकते हैं बुक का नाम भी मौजूद है, ये नासिरुद्दीन अल्बानी साहब की रिसर्च है, इसमें पेज नंबर 72 अल बिशारा तो फी शुजूजी तहरीक उल असबा फि तशखुद व सबूतुल इशारती। नाम भी नहीं हमें तो पढ़ना है, लोग किताबें लिख कर चले गए। अल्लाह अकबर। सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहने पर उंगली उठाना और कहने के बाद रख देना किसी रिवायत से साबित नहीं, आप बस इसको हाईलाइट कर लें क्योंकि हम अमूमन सिर्फ इस वक्त करते हैं। फिर तशहुद में शहादत की उंगली में थोड़ा सा खम, यानी ऐसे सीधी नहीं बल्कि ऐसे मुड़ी हुई उंगली हो, थोड़ा सा खम होना चाहिए। यह भी रिवायत अबू दाऊद की 991 और इब्ने खुजैमा 716 और इब्ने हबान में 499 है। कादे तशखुद से तीसरी रकत के लिए खड़े हों तो अल्लाह अकबर कहते हुए उठें और रफुल जदैन करें। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो रकत पढ़कर खड़े होते तो अल्लाह अकबर कहते और दोनों हाथ उठाते। अब आप तीसरी और चौथी रकत बदस्तूर पढ़कर बैठ जाएं। ये रिवायत लीजिएगा, बुखारी की रिवायत है 739। अब देखिए जब आराम से आप एक एक एक्शन पे गौर करेंगे तो आपको जो पोजीशन दिखेगी वो बहुत ही क्लियर है, बड़े आराम से आप इसको पढ़ेंगे और उंगली यानी घुमाकर सीधी नहीं बल्कि हल्की सी खमदार होगी और बीच में रैंडमली ऊपर करेंगे। सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पे कहना, इसकी दलील नहीं, वरना देखिए इतनी हदीसें बयान हो रही हैं वो भी हो जाती, कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन हमने लफ्ज़ गवाही के साथ उंगली को उठाना जोड़ दिया और होते होते फिर वो हमारी आदत बन गई। आखिरी कादा जिसको तशहुद कहते हैं, इस आखिरी कादे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूँ बैठते हैं, ये फ़र्क होगा पहले से। जैसा कि अबू हुमैयत साइदी रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब वो सजदा आता जिसके बाद सलाम है, यानी जब आखिरी रकत का दूसरा सजदा करके फारिग होते और तशहुद के लिए बैठते तो अपना बायां पांव दाईं पिंडली के नीचे से बाहर निकालते और अपने बाएं जानिब के कूल्हे पर बैठते थे। आखिरी कादे में दायां पांव खड़ा करना मुस्तहब है, कभी कभी इसे बिछाना भी जायज़ है। बाईं जानिब कूल्हे पर बैठना तवरुक कहलाता है, ये सुन्नत है, हर मुसलमान को आखिरी कादे में तवरुक ज़रूर करना चाहिए। कितने अफसोस की बात है कि हमारी औरतें तो आखिरी तशहुद में तवरुक करें और मर्द इस सुन्नत से महरूम रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को मना किया जो तशहुद की हालत में बाएं हाथ पर टेक लगाए हुए था। आपने फरमाया इस तरह ना बैठो क्योंकि नमाज में इस तरह बैठना यहूद का तरीका है जिनको अजाब दिया गया। अब ये सारी जो रिवायात थी ये बुखारी 828, मुस्लिम 579 और अबू दाऊद 994 और मुसनद अहमद 116 थी। क्या पता चला हाथ रख के टेक लगाने की तरह से नहीं बैठना इंशाल्लाह। अब देखिए कि यहाँ तक जितना पढ़ा है इसमें कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगी होंगी, दोहरा देती हूँ। वो तशहुद जिसमें सलाम फेरा जाता है उसमें आराम से नीचे बैठा जाता है, तबर्रुक कहते हैं इसको, लेकिन आज कुछ लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया। औरतों को तो नहीं मना करते लेकिन मर्दों की नमाज ज़रा सा इधर मुख्तलिफ हो गई, तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह जो भी करवाए वो सुन्नत के मुताबिक कराए। अच्छा जो करते हैं वो भी सुन्नत समझ के ही करते हैं, लेकिन देखिए ना एक बात आपको नहीं पता थी, अब पता लग गई, जाके या तो तहकीक कर लें, कहने वाले की बात पे ना इतबार कीजिए, जो किताब हमने चूज़ की है आपके लिए वो ना देखिए, आप डायरेक्ट हदीस की चीज़ों को देखिए। हर हदीस की बुक में यानी बुखारी मुस्लिम और इस तरह दूसरों में किताबुल सलात मौजूद हैं, आप जब खुद उसको पढ़ेंगे और किसी दूसरे से उसको नहीं रिलेट करेंगे आपको खुद सही दिखेगा। पहली बात हमने क्या सीखा, तशहुद में उंगली उठाना सुन्नत है, उंगली हिलाना भी सुन्नत है, और कई मुबालगे से इतना ज़्यादा हिलाते हैं कि दूसरे को डिस्ट्रैक्शन होती है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। फिर तशहुद में उठी हुई उंगली ज़रा सी मुड़ी भी हो, खमदार हो, और तीसरी रकअत शुरू करने से पहले रफुल यदैन करना चाहिए। और तवरुक कहते हैं बाएं कूल्हे पर बैठना, और आखिरी कादा तवरुक की सूरत में बैठना, ये सुन्नत है। इंशाल्लाह हम कल इससे आगे के हिस्से से लेंगे, तो कुछ चीज़ें फिर हमें आखिरी तशहुद की उसमें भी दिखेंगे। अल्लाह ताला आपको मुझे इस तरीके से इनको पढ़ने वाला बना दे। कल हम दुरूदो सलाम से शुरू करेंगे अगली नशिस्त में, ताकि हमारी एक एक चीज़ ठीक हो जाए। अगर आपको इसमें 10, 50, 20% नहीं समझ आए, कोई बात नहीं, ये चीज़ें एक दिन में नहीं भी समझ आती। ज़ाहिर है कि हमें इतने सालों से आदत हुई होती है, और कभी हमने ये नाम पढ़े सुने कहाँ थे। ये तो आज हदीस खोली तो ये पढ़ लिया, तो इस पे भी बोलिए अल्लाह तेरा लाख शुक्र है कि तूने हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनने की और पढ़ने की तौफीक दी। अल्लाह ताला हम सब से राज़ी हो। तो इंशाल्लाह यहाँ रुकेंगे, अल्लाह ताला आफियत में रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतुबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।